ಸಮಾವೃತಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತ ಮೂಢೋಯನ್ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಮಜಮವ್ಯಯಂ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತ ಮೂಢೋಯನ್ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಮಜಮವ್ಯಯಂ ರಹಸ್ಯೋಕಿ ಛಾಯಾ ಮೇ ಛಿಪಾಂತಿಮ ಜ್ಞಾನ ನಿಶಬ್ದ ಆಕಾಶ ಮೇ ಗೀತೇಕ ಅಂಜಾನ್ ರಹಸ್ಯೋಕಿ ಛಾಯಾ ಮೇ ಛಿಪಾಂತಿಮ ಜ್ಞಾನ ನಿಶಬ್ದ ಆಕಾಶ ಮೇ ಗೀತೇಕ ಅಂಜಾನ್ ಅಜ್ಞಾತ ಕೇ ಗರ್ಭ ಸೇ ಉಠೆ ಅನ್ಸುಲ್ಝಾನ್ ಸ್ವರ್
एक माँ अपने जवान बेटे को लेकर मनोचिकित्सक के पास आई। बेटा चित्रकार था पर अब वो कुछ भी नहीं करता। चिकित्सक ने पूछा, समस्या क्या है? मां ने कहा, इसके मन में डर बैठ गया है। राह चलते यदि अंधे व्यक्ति को देखता है तो सोचता है कि मैं अंधा ना हो जाऊं। राह चलते यदि किसी लंगड़े व्यक्ति को देखता है तो सोचता है कि कहीं मैं लंगड़ा ना हो जाऊं। यह भय इतना भीतर चला गया है कि उसकी प्रतिभा को कुंठित कर दिया है। उसने चित्र बनाना बंद कर दिया है। दिन रात एक भय से ग्रसित है। यदि कोई मरता है तो सोचता है कहीं मैं ना मर जाऊं। क्या किया जाए? दवाइयां दी, काउंसलिंग सेशंस हुए, पर जितना इसको समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो और भयभीत होता है। जो कुछ निगेटिव घटित हो रहा है उसे लगता है वो सारी नकारात्मक घटनाएं उसके साथ हो रही। मनोचिकित्सक ने मां को पूछा, आप लोग इसे क्या समझाते हो? मां ने कहा, वही कि ऐसा कुछ नहीं। चिकित्सक ने कहा, तुम लोगों ने गलत समझा। ऐसा समझाना बंद कर दो कि ऐसा नहीं होगा। उसे समझाओ कि यह हो सकता है। दूसरा मर रहा है तो तुम भी मरोगे। दूसरा अंधा हुआ, इसकी क्या गारंटी कि तुम अंधे नहीं होंगे कल? किसी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई तो इसकी क्या गारंटी कि तुम्हारी पत्नी कल ना भाग जाए। कोई गांव नष्ट हो गया तो तुम्हारा घर क्यों नहीं नष्ट होगा। उसे समझा कि तुम भी अंधे हो सकते हो, तुम्हारे भी हाथ कट सकते हैं। उस युवक के चेहरे पर एक अद्भुत सा प्रकाश आया ये सुनकर। वो गया घर और जब अगले दिन आया तो एक दूसरा व्यक्ति था। भय ने घर कर रखा था। उसको पूछा, तुम क्यों भयभीत थे? वो कहता था, मेरा हाथ अगर कट जाए तो मैं चित्र कैसे बनाऊंगा। अभी तो नहीं कटाना, जब तक नहीं कटता तब तक तो बनाओ, जब कटेगा तब देखेंगे। कमजोरी भय के गर्भ से जन्म लेती है। भयभीत चेतना अंततः उदासी की ओर जाती है। निर्बल से शक्तिशाली बनना, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आना। डबल विदेशियों से मुलाकात, 29th मार्च की ये मुरली 1986। कंफ्यूजन, उलझन, मन में उलझन ही उलझन, द्वंद ही द्वंद है। क्यों है पता नहीं, पर द्वंद है, उलझन है, कंफ्यूजन है। बाबा ने कहा विदेशियों को, पहले कंफ्यूजन थे, कंफ्यूज थे, पहले खेल करते थे, अभी गंभीर हो गए। एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, व्यापारी है, और देखता है सामने ही एक दूसरा उसका ही प्रतिद्वंदी बैठा हुआ है जो निरंतर विरोध करता है या फिर आगे जाने की कोशिश करता है, ईर्ष्या करता है। इसलिए दोनों बैठते हैं चुपचाप, बात नहीं करते। ये व्यक्ति सोचता है कुछ तो बात करूं, परंतु मैं अगर उससे कुछ पूछूं तो जरूर ये उल्टा उत्तर देगा, कभी सच्चाई नहीं बताएगा कि कहां जा रहा है, कौन सा बिजनेस चालू कर रहा है, जरूर ये झूठ बोलेगा। और वो सोचता है मैं अगर इससे पूछूं कि कहां जा रहे हो तो ये कहेगा कलकत्ता जा रहा है। फिर वो सोचता है पर ट्रेन तो दिल्ली जा रही है। फिर भी सोचता है पूछ के तो देखता हूं ये क्या कहता है। पूछता है कहां जा रहे हो, वो कहता है दिल्ली जा रहे हो। व्यक्ति कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो ये व्यक्ति कहता है तुम दिल्ली जा रहे हो और झूठ बोलते हो कि दिल्ली जा रहे हो ताकि मैं समझूं कि तुम कलकत्ता जा रहे हो। क्या कहता है, तुम जा रहे हो दिल्ली पर झूठ बोल रहे हो कि दिल्ली जा रहे हो ताकि मैं समझूं कि तुम कलकत्ता जा रहे हो। खेल सारा मन का है। तो आज की अव्यक्त वाणी, रोज रात में रीडर्स क्लब होता है उसमें ये मुरली रिवाइज होती है, तो एक बार इस क्लास में बैठने से पहले या तो मुरली पड़ी हुई हो या तो सुनी हुई हो, या तो रात का 8 बजे का जो रीडर्स क्लब है 10 मिनट में वो रिवाइज होती है, वो 10 मिनट सुना हो। तो क्या कहा बाबा ने विदेशियों को? दो विशेषताएं, एक प्रेम और दूसरा परिवर्तन। जहां प्रेम होगा वहां परिवर्तन होगा। पावर ऑफ लव, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम चाहते हैं कि दूसरे बदल जाए पर वो बदलते नहीं, शायद हमारे प्रेम में कमी है। दूसरों के संकल्पों में शक्ति भर देना ही सेवा है। इसको लिख के रखना, तुम्हारा संकल्प ही सेवा है। तुम्हारा संकल्प ही सेवा है। अपने विचारों को और संकल्पों को इतना शक्तिशाली बनाना कि उस संकल्प से ही आत्माओं के विचारों में और संकल्पों में शक्ति भर जाए। ज्ञान किसके पास नहीं, सबके पास है, परंतु संकल्प नहीं। अगर है भी तो उसमें शक्ति नहीं। कौन नहीं जानता नीति क्या, अनीति क्या, अध्यात्म क्या, संसार क्या, दुख क्या, सुख क्या, सार क्या, असार क्या, सबको सब पता है। एक चोर को भी पता है कि चोरी करना महापाप है, परंतु संकल्प नहीं। वातावरण तमो प्रधान, तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी सेवा है। दूसरों के संकल्पों में शक्ति भरना ही सेवा है। क्योंकि क्योंकि तुम खुद एक संकल्प हो। मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं किसी मां बाप से जन्म नहीं लिया हूं, मैं किसी शरीर से निकला नहीं हूं, मैं ये शरीर भी नहीं, ना मैं किसी देश का हूं, ना किसी संस्कृति से जन्मा हूं, मैं संकल्प की रचना हूं। विदेशियों से बाबा कह रहे, ब्रह्मा के अव्यक्त गर्भ से जन्मे हुए तुम संकल्प हो। ब्रह्मा के मौन से प्रकट हुए तुम संकल्प हो। एक है मुख वंशावली, एक है संकल्प की रचना। ब्रह्मा के संकल्प की रचना मैं हूं। कितना अच्छा विचार है ये कि मैं संकल्प हूं। आत्मा बाद में, शरीर तो उसके भी बाद में, किसी देश का नागरिक वो उससे भी बाद में, स्त्री पुरुष बहुत बहुत बाद में, ये सब मैं हूं ही नहीं। ना मैं किसी देश से जन्मा हूं, ना किसी संस्कृति से जन्मा हूं, ना किसी परंपरा से जन्मा हूं, ना स्त्री ना पुरुष। मैं संकल्प हूं। क्या हूं? संकल्प जैसे महाभारत में दिखाए द्रुपद यज्ञ रचता है ताकि द्रोणाचार्य को मार सके, ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य को मारे। कौन निकलता है उस यज्ञ की वेदी से? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो धृष्टद्युम्न क्या है? एक संकल्प है। वैसे हम कौन है? एक संकल्प हूं। उस संकल्प की रचना जो हुई है एक विशेष कार्य के लिए हुई है। इस धरती पर प्रकट हुआ मैं एक संकल्प हूं। कितना नया विचार है। ब्रह्मा के अव्यक्त गर्भ से जन्मा संकल्प, ब्रह्मा के मौन से प्रकट हुआ संकल्प। और क्योंकि मैं संकल्प हूं मेरा हर संकल्प सेवा है, और दूसरों के संकल्पों में शक्ति भर देना मेरा विशेष कर्तव्य है। आई एम थॉट। धीमी तपस्या नहीं, अग्नि तपस्या की आवश्यकता है। मंथर गति नहीं, द्युत गति, तीव्र गति। तो मुरली की शुरुआत दो विशेषताएं, प्रेम की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति। मुरली की शुरुआत अनेक अनेक रीति रस्म और सब किस में जुड़ गए? एक मत में। फिर यहां पर अव्यक्त वतन की सात आठ विशेषताएं बताइए। अव्यक्त वतन में क्या मिलन होता है? परंतु सदा मिलन। अव्यक्त वतन में समय नहीं, टाइमलेसनेस। अव्यक्त वतन में हद नहीं, बेहद। अव्यक्त वतन में भीड़, यहां पर इतनी भीड़ आ गई तो लगता है बहुत लोग आ गए, वहां तो इतना पूरा विश्व भी आ जाए तो भी छोटा सा संगठन। अव्यक्त वतन में और क्या? पाप समान है। अव्यक्त वतन में कोई साधन की आवश्यकता नहीं। अव्यक्त वतन में मौन की भाषा, मतलब मुरली पड़ी नहीं है। मुरली में क्या है? ना किसी साधन की, साधन लेसनेस, सेपरेट लेसनेस। मिलन है वहां पर सदा, अलग पृथक कुछ भी नहीं, सदा मिलन हो रहा है, सदा बाप समान है। साधनों की आवश्यकता नहीं, समय की आवश्यकता नहीं, समय लेसनेस, समयातीत। तो एक विजुअलाइजेशन आज का होमवर्क, तीन विजुअलाइजेशन में दो नंबर का विजुअलाइजेशन। इस दुनिया से उस वतन की, सूक्ष्म वतन की यात्रा करना है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको नोट करना है। यहाँ आवाज है, वहां आवाज नहीं। यहाँ समय है, वहां समय नहीं। यहाँ मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, वहां ये सब नहीं है। वहां कोई भोजन के डाइनिंग और किचन, ये सब नहीं है। फूडलेसनेस, स्पीचलेसनेस, स्लीपलेसनेस, टाइमलेसनेस। हम टाइम लूप में जी रहे हैं, एक टाइम लूप में बंद है। सुबह उठे, नाश्ता करना है, दोपहर में खाना है, फिर शाम को खाना है। ये कैसा बंधन है, अजीब सा। खाते रहो समय अनुसार, टाइम हो गया इसलिए खाओ, भूख से कोई लेना देना नहीं। टाइम हो गया चलो खाओ, पिकनिक गए खाओ, भूख से कोई लेना देना नहीं। पार्टी है खाओ, कोई जा रहा है फेयरवेल पार्टी खाओ, कोई आ रहा है वेलकम पार्टी खाओ। कैसे अजीब गरीब बंधन बना के रखे, टाइम में बंधे। बाबा ने कहा उस वतन की यात्रा करो। फरिश्ता, लाइट ही भोजन है यहां पर। लाइट इज फूड, लाइट इज रेस्ट, लाइट इज स्लीप, सो जाओ, और नींद नहीं आती उसके लिए दुखी रहो। नींद अच्छी आई तो बहुत खुश रहो कि अच्छी नींद। स्लीपलेसनेस, टाइमलेसनेस, फूड फ्रीडम, तो विजुअलाइज करना है लिमिटेड वर्ल्ड से सटल वर्ल्ड की जर्नी, कि मैं इस दुनिया से उस दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। यहां पांच तत्व है, सूक्ष्म वतन किस तत्व से बना हुआ है? किसी भी तत्व से नहीं बना है, प्रकाश से बना हुआ है। परमधाम किस तत्व से बना है? हाँ, वो ब्रह्म तत्व से बना हुआ है, बट वो ये तत्व नहीं है। अर्थात वहां टेम्परेचर लेसनेस या फिर वहां टेम्परेचर जो है सर्दी गर्मी ये सब नहीं है। परमधाम में आत्माएं परेशान होती है कि आज गर्मी ज्यादा है, एसी, आज ठंडी ज्यादा है, आज बारिश ज्यादा हुई। नथिंग, टेम्परेचर के प्रभाव से मुक्त। कल एक बहन आई थी, वो कह रही थी बिना एसी के इस बहन का होता ही नहीं है, एसी ही चाहिए, कंटिन्यूअस एसी चाहिए, नहीं तो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। हमने कहा होने दो। गर्मी होती है तो गर्मी से प्रेम करो, गर्मी के प्रति विरोध प्रकट करते हो तो प्रकृति इसके प्रति विरोध प्रकट कर रहे हो। बारिश से कंप्लेंट कर रहे हो अर्थात प्रकृति के प्रति विरोध है, वो प्रकृति की निंदा, प्रकृति की के प्रति अकृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हो। लव, गर्मी है 50 डिग्री ना, पसीने से प्यार करो, कैसा पसीना है, टेम्परेचर माइनस कितना तभी ले लो, उससे विरोध कैसा। इस दुनिया से वतन की यात्रा, ये विजुअलाइजेशन। पहला विजुअलाइजेशन थॉट करंट विजुअलाइजेशन, देखो लाइट हाउस हो, प्रकाश चारों तरफ फैला। तीसरा विजुअलाइजेशन, नई आत्माएं आ रही है तो मैं क्या कर रहा हूं, उनका वेलकम करो। इस मुरली में बाबा ने ये बहुत बार कहा, नई आत्माएं आ रही है अमृत वेला, क्या करना है उनका स्वागत, हे आत्माओं आ जाओ, वेलकम। भगवान के परिवार में, प्रभु परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, परमात्मा यज्ञ में स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही, आ जाओ। और जो नहीं आना चाहते उनका आह्वान करना है, और जो इस कुल की आत्मा है उनका भी आह्वान करना है, हे देव कुल की आत्माओं आ जाओ। जीसस कहता है बाइबल में, माय शिप विल हियर माय वॉइस, आई एम द गुड शेफर्ड, मैं वो चरवाहा हूं, मेरी जो भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनेंगी, पर जो मेरी भेड़ नहीं है वो मेरी आवाज को नहीं सुनेगी। माई शिप विल हियर माई वॉइस, जो इस झाड़ के पत्ते हैं वो निकल निकल कर आएंगे, जो अलग अलग धर्मों में चली गई है वो निकल कर आएगी, अभी तक आई नहीं है। बाबा ने कहा है कि जो पहले 50 वर्ष में आए उनके आने में और अभी के आने में और भविष्य में जो आएंगे उसमें अंतर होगा। आह्वान किया जाए आत्माओं का कि तुम ब्रह्मा के संकल्प हो, आ जाओ। तो नई आत्माओं का वेलकम करना, नई आत्माओं को पालना देना, नई आत्माओं को में शक्तियां भरना, यह हमारा एक सूक्ष्म कर्तव्य है। फिर कह रहे हैं हमारा संकल्प ही हमारी सेवा है। जो जिसकी स्पेशलिटी होती है उसको उसमें अपडेट रहना पड़ता है, कितना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अगर एक बिजनेसमैन ध्यान ना रखे लेटेस्ट क्या चल रहा है तो पीछे रह जाएगा। तो तुम्हारा तो कार्य व्यवहार ही क्या है, संकल्प, जितने संकल्प रिफाइंड उतनी अधिक सेवा। तो अपने संकल्पों को धार लगानी है, और नुकीला और नुकीला और नुकीला करना है उसे। तो ये तीन विजुअलाइजेशन है, पहला मैं लाइट हाउस हूं, दूर दूर तक मेरा प्रकाश फैल रहा है। दूसरा, इस जगत से उस जगत की यात्रा करना है। उस जगत में न भोजन है, न पानी है, न सोना है, न हवा, न पांच तत्व, कुछ भी नहीं है। न सर्दी, न गर्मी, न दिन, न रात, एक रस, वन होमोजीनियस स्टेट सब्सटेंस। मैं वहां हूं, वहां न इच्छा है, न तृष्णा है, न शरीर है, बॉडी लेसनेस, न स्पीच है, न साउंड है, न ध्वनि है, न स्वर है, ना कोई गीत है, ना कोई संगीत है, ना कोई कविता है, न शब्द है, शब्द रहित, शब्दातीत, ना कोई कर्म है, कर्मातीत। मैं उस जगत में हूं, इस टाइम लूप से बाहर उधर हूं। न थकान है, न फटीग है, न बीमारी है, न जन्म है, न मृत्यु है। डेथलेसनेस, बर्थलेसनेस, फियरलेसनेस, वाइसलेसनेस, ये पहला कार्य है आज का। बैठो, आंखें बंद करो और विजुलाइज करो, देखो मैं वहां चला गया। न भूख है, न प्यास है, क्यों कुछ डालू तो नीचे आना पड़े। दूसरा, ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने बैठो और सोचो, बाबा का मेरे लिए क्या संकल्प है। मुरली में कहा है, ब्रह्मा के चित्र में चेतनता का अनुभव होता है। तो फोटो के सामने बैठो समर्पण भाव से और पूछो उससे, ये आपकी मेरे लिए इस समय क्या प्रेरणा है। मुझे क्या करना चाहिए। ये दूसरा कार्य। तीसरा कार्य, स्पिरिचुअल ब्रिज, एक पुल बनाना है। उस तरफ वर्तमान के संस्कार, इस तरफ बाप समान के संस्कार। अब के जो संस्कार है उसमें क्या क्या है भरा हुआ, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, कमजोरी, डर, और जो बाप समान वाले संस्कार है उनमें क्या है, और मुझे करना क्या है। उधर से इस तरफ आ जाऊं, उस किनारे से इस किनारे। इस मुरली में और एक विदेशियों की महिमा की है बाबा ने, पहले कंफ्यूजन में थे अभी क्लैरिटी में आके, पहले निर्बल थे अभी शक्तिशाली बन गए, अभी पहले खेल में थे अभी गंभीर बन गए, अभी झटकू बन गए। और झटकू की परिभाषा क्या दी मुरली में, झटकू अर्थात संकल्प से भी त्याग कर दिया है, आंख भी नहीं डूबती। जो चीज छोड़ दिया वो छोड़ दिया। कल भी कहा था, मीनिंग लेस हो जाए चीजें, किसी चीज का त्याग नहीं करना है। अगर मेरा इस पेन में मोह है, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता, यही मुझे चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाए इससे बड़ा कि ये व्यर्थ हो जाए, ये मीनिंग लेस हो जाए, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। अब ये सामने भी आ जाए तो उसका कुछ ये आकर्षित नहीं करता। ये पेन शरीर भी हो सकता है, ये पेन कोई व्यक्ति हो सकता है, ये पेन कोई वस्तु हो सकती है, ये पेन घर हो सकता है, ये पेन पैसे हो सकते हैं, कुछ भी, कोई कमरा हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी, कोई विचारधारा, कोई बिलीफ, कोई मान्यता। अब ये मान्यता व्यर्थ हो गई है, इसका मैं क्या करूं। ये किसी का विरोध भी हो सकता है, किसी की निंदा, किसी की ग्लानी, वो सब मेरे लिए व्यर्थ हो गया। तो चीजें व्यर्थ हो जाए तो उससे परे निकला जा सकता है फिर, क्योंकि त्याग में आकर्षण है। फिर जिसका त्याग करते हैं उसका आकर्षण होता है, जिसको छोड़ते हैं उसी में बुद्धि अटकी हुई होती है। तो स्पिरिचुअल ब्रिज, वर्तमान के संस्कार, बाप समान संस्कार, और बीच में एक पुल, और क्या पुरुषार्थ करना है, उधर से इधर आने के लिए ऐसा एक चित्र बनाना है। स्पिरिचुअल ब्रिज का स्केच। अगला, एक्सपीरियंस बीइंग इन मधुबन इवन इन अब्रॉड। विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं, भले तुम दूर हो पर अनुभव करो कि मधुबन में हो, और मधुबन का अनुभव वास्तविक मानसिक अनुभव ही ज्यादा है। स्थूल रहना, स्थूल घूमना फिरना जिनको प्राप्त है वो भाग्यशाली, पर जिनको नहीं है मन से यात्रा करना और अधिक शक्तिशाली। मधुबन की क्लास, मधुबन की भट्टी, यहां से जाने के बाद में भी ये सारे भावों को मन में समान जाने दो। डीप डीप उतरने दो, केवल तैरना नहीं है, नीचे जाना, अनुभव को नीचे जाने दो। कहा जाता है जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, पर वैसा नहीं है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मौन में चेतना जो स्वीकार करती है वो बनती है। बनने की विधि क्या है? मौन में भीतर से स्वीकार कर लिया वो बनती है। भीतर अंदर स्वीकार कर लिया है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। केवल बोलने से या सोचने से नहीं होता है, मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, ये बोला और सोचा पर बने नहीं, स्वीकारा कहां इसको? अभी आत्मा हूं तो आत्मा को तो ना तो कुछ भी नहीं चाहिए, उसको मुक्त है वो। तो आत्मा बनती वो है जो वो मौन में स्वीकार करती है। केवल बोलने से नहीं, केवल सोचने से नहीं, केवल चिंतन से भी नहीं। चिंतन भी बहुत कर लिया पर स्वीकारा नहीं भीतर, तो बनेंगे नहीं। तो आज क्या अनुभव करना है? मधुबन में हूं, मधुबन की गलियों को याद करो, मधुबन की वीथियों को याद करो, मधुबन में बिताए हुए समय को याद करो। और मधुबन, इससे पहले भी कहा है, किसी भौगोलिक व्यवस्था का नाम नहीं है। ये माउंट अबू और ये मधुबन, इस धरा पर भगवान के हस्ताक्षर है मधुबन। और ब्रह्मा भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर देखा जाए, यदि शिव परमात्मा है तो ब्रह्मा उसका शब्द है। हर वो स्थान जहां पर परमात्मा प्रेम है वो मधुबन है, हर वो स्थान जहां पर भगवान की वाणी गूंज रही है वो मधुबन है, हर वो स्थान जहां पर परमात्मा की निर्विकार अव्यभिचारी याद है वो मधुबन है, हर वो स्थान जहां पर निष्कलंक ब्रह्मचर्य है, अनटच्ड प्यूरिटी है, वो मधुबन है। हर वो स्थान जहां समर्पण अपने शिखर पर है वो मधुबन है, हर वो मन जो प्रभु में लीन है वो मधुबन। तो अनुभव करना है इस स्थूल मधुबन का भी, इस सूक्ष्म मधुबन का भी, कि मैं मधुबन में हूं, अशरीरी हूं। जब भी देहभान अटैक करे, जब भी वासना का आक्रमण हो, तुरंत अनुभव करो मैं बाबा की कुटिया में बैठा हूं, बाबा के सामने हूं। व्यर्थ सताए तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ, बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ, उदास हो जाओ तो बाप से रूरियान करने कुटिया में आ जाओ। शक्तिशाली बने हो, तीव्र पुरुषार्थी बने हो, गंभीर बने हो, खेलते नहीं हो, झाटकू बने हो, ये सारी उपमाएं बाबा ने डबल विदेशियों को दी है। अब शक्तिशाली बनो, दूसरे जो निर्बल है उनको भी शक्तिशाली बनाओ। शक्ति हो। शक्ति शिव में है, शिव शक्ति में है, अभिन्न है, अविभाज्य है दोनों। शिव की जो शक्ति है वो तुम हो। ये संकल्प कैसा है? शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। शक्ति को लगा कि इस संसार पर अवतार लूं, शक्ति इस धरा पर प्रकट हुई, वो शक्ति मैं हूं। तो ये आज का चौथा अभ्यास और अंतिम अभ्यास, बुकमार्क बनाना है। बुकमार्क पता है ना, किताब में जो रखते हैं ना ऐसा। मुरली से कुछ शक्तिशाली वाक्य ले लेना दो तीन, और उसको एक पेपर पर लिखना, उसको लैमिनेट करो या कुछ भी करो, उसका बुकमार्क बनाना मुरलियों के बीच में रखने के लिए। हाँ ऐसा बुकमार्क, ये किसी ने बना के भेजा था श्रद्धा बहन, तो ये बुकमार्क है, ऐसा बुकमार्क। मुरली से तीन चार महावाक्य ले लो, शक्तिशाली वाक्य ले लो, जो हमें पसंद आए वो ले लो, उसका बुकमार्क बनाना। तो ऐसे कितने बनाएंगे? पांच, पांच बुकमार्क। तो आज की मुरली से ये पांच कार्य है। तो मुरली की शुरुआत समान से, दो शक्तियों से, वतन की बातों से, और उसके बाद सीधा विदेशियों से मुलाकात। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे हो गए, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, कमजोर नहीं बनना है, अपनी कमजोरी को मधुबन में ही छोड़ के जाना है। ये भी एक पॉइंट है, ये लास्ट में याद प्यार से पहले छोड़ के जाना। मतलब कैसे छोड़ के जाना? ये कमजोरी है छोड़ के गए ऐसे। संकल्प स्थूल में भी कुछ कर सकते हो, पोटली लो एक, उसमें कमजोरी डालो। छोड़ के निकलो। तो सबसे पहला कार्य विजुअलाइजेशन, मैं लाइट हाउस हूं, किरणें फैल रही है। दूसरा विजुअलाइजेशन, सूक्ष्म वतन में जा रहा हूं। तीसरा विजुअलाइजेशन, नई आत्माओं से कैसे बात करेंगे, क्या खत लिखेंगे, कोई नया न्यू एंट्रेंट, न्यू कमर, न्यू बी के आ रहा है, क्या खत लिखोगे उसको, आ जाओ। तीसरा, ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने बैठकर पूछना है व्हाट, क्या, कुछ तो बोलो, अरे क्या, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं। तीसरा, स्पिरिचुअल ब्रिज, उधर से इधर आना है। मेरा कौन सा वो संस्कार है जो खत्म ही नहीं होता है, खत्म जाता ही नहीं है, उसके वजह से मैं फंसा हूं। वो हो सकता है बोल का संस्कार है, नींद पर काम करना है, भोजन, फूड, स्लीप, स्पीच। अगला, मधुबन निवासी हूं उसका अनुभव। और लास्ट, एक पेपर मार्क, बुक मार्क बनाना है। तो कल एग्जाम होगी एमएट 11, 11 टेस्ट सब दे चुके हैं, कल 84 मुरलियों पर एग्जाम है। और वो एग्जाम वही प्रश्न आएंगे जो चार SF1, SF2, SF3, SF4, 21, 21, 21, 21, और वो सारे क्वेश्चंस मुरली में ग्रुप में पोस्ट हो चुके हैं, उनको केवल पढ़ना है प्रश्नों को। उन्हीं प्रश्नों में से टोटल कितने प्रश्न हुए, उन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम होगी। 50 प्रश्न होंगे एग्जाम में, कितने, 244 प्रश्न है, उसको रट लो, उसको पी लो। इस मुरली में और एक पॉइंट कहिए, भूल गया, स्टूडेंट लाइफ और सहयोगी, इन दोनों को भी अनुभव करना है। तो ये स्टूडेंट लाइफ है, मुरली पढ़ना, स्टूडेंट के जैसा पढ़ना, नोट्स निकालना, होमवर्क करना, एग्जाम देना, पेस पास और फेल, उसका भी अनुभव करना, कम मार्क्स, ज्यादा मार्क्स। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता है ना, जो हमारा दोस्त जो कभी पढ़ाई नहीं करता है, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है उसको हमसे ज्यादा मार्क्स, कितना दुख होता है। तो ये सब स्टूडेंट लाइफ के लक्षण है। तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। रात में नींद नहीं आती है ना, तो मोबाइल निकालकर यूट्यूब देखने से अच्छा, शॉर्ट्स देखने से अच्छा, रील्स देखने से अच्छा मुरली लो। मुरली जैसी कोई लोरी नहीं है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, नींद।
छाया में छिपा अंतिम ज्ञान,
शब्द आकाश में गीत एक अनजान,
रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान,
शब्द आकाश में गीत एक अनजान,
अज्ञान के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, संकेत गूंज रहा,
अब है अंधेर घड़ी,
रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार, रहस्यांतर।